হে না প্রভু কথা গেলা আচার্য ঠাকুর, হে না প্রভু কথা গেলা আচার্য ঠাকুর, কাহামর স্বরূপ কাহ সনাতা, কাহামর স্বরূপ কহদাশ রঘুনাথ পতিত পাবা, কহদাশ রঘুনাথ পতিত পাবা, কহমর ভট্ট যুগ কহ কবিরা, কহমর ভট্ট যুগ কহ কবিরা, এক কালে কোথা গেলা গোরা নট রা, এক কালে কোথা গেলা গোরা নট রা, পাশানে কোটিব মাথা অনলে পশিব, পাশানে কোটিব মাথা অনলে পশিব, গৌরাঙ্গ গো নেরনিধি কথা গেলে পাব, গৌরাঙ্গ গো নেরনিধি কথা গেলে পাব, সঙ্গে সঙ্গে যে কইল বিলা, சங்கனா பைய கந்த நரோத்தம தா சங்கனா பைய கந்த நரோத்தம தா நிலா பிரேமதனம் கருணா பிரச ஹன பிரப கோ கேலா அச்சா போ ஜய கோவிந்த கஜ ஜய ஆச்சார்ய ஠ாக்குர் கோவிந்த கஜ ஜய ஆச்சார்ய ஠ாக்குர் ஜய கோவிந்த கஜ ஜய ஆச்சார்ய ஠ாக்குர் கோவிந்த கஜ ஜய ஆச்சார்ய ஠ாக்குர் ஜய பிரபு பத ஜய ஆச்சார்ய ஠ாக்குர் பிரபு பத ஜய ஆச்சார்ய ஠ாக்குர் ஜய கௌரணிதாய் 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 ஜய கௌரணிதாய் ஜய கிருஷ்ண பல்லராம் கிருஷ்ண பல்லராம் கிருஷ்ண பல்லராம் ஜய விருந்தாவனுதாம் ஜய ராதா சம சுந்தராதா சம சுந்தராத ஜய ஜய பிரபுபாத் 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 பிரபுபாத்
ஜய நித்யலீலா பிரவிஷ்டு விஷ்ணுபாத் பரமஹம்ச பரிபிராஜகாச்சாரிய அஷ்டதசத கிருஷ்ண கிருபா ஸ்ரீமூர்த்தி சிலோபாயா சரணாரவிந்த பக்திவேதாந்த சுவாமி சில பிரபுபாத் கி அனந்த கோடி வைஷ்ணவிருந்தி நிதாயூர் பிரேமானந்தி. थोड़ा इतने समस्या हो गया, अभी बलराम महल में भी नहीं आते थे, अभी तो इतना छोटा हो गया, बहुत समस्या हो गया अभी तो. अभी तो लोग सोचेंगे कि जागा ही नहीं, आना ही बंद करने. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ॐ नमो भगवते वासुदेवाय. नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये நஷ்ட பிராயேஷு அவத்ரேஷு नित्यं भागवते सेवया भागवतोत्तम श्लोके भक्तिर भवति निष्ठिकी। श्लोक श्रीमद् भागवतम स्कंद 8 अध्याय 24 और श्लोक 47। जनो बुध अयम निज कर्म बंधना सुखाय कर्म समहिते असुखम यत सेवये तम विधुनति असत्मति। ग्रंथिम स भिद्यत हृदयम स नो गुरु जनो बुधम यम निज कर्म वंदना सुखेच्छाय कर्म समुहिते असुखम यत् सेवये तम विधुनति असत्मति। ग्रंथिम स विद्यत हृदयम स नो गुरु जनो बुधो यम निज कर्म वंदना सुखेच्छाय कर्म समहिते असुखम यत् सेवयम् तम विधुनति असद्मति। ग्रंथिम स विद्यत हृदयम स नो गुरु। एक दो लोग बोली जनो बुधयम् निज कर्म वंदन इच्छा कर्म समहिते असुखम यस्यं विदनाति असन्मति। ग्रंथिम स विद्यत हृदयम् स नो गुरु माता जी। दो माता जी बस। शब्दार्थ जनहा जन्मतः मृत्यु के अधीन बद्ध जीव अबुदह शरीर को आत्मा स्वीकार करने के कारण सर्वाधिक मूर्ख अयम यहा निज एक समान अपने पापमय कार्यों के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार के शरीर ये गलत लिखा है इधर नीजो एक समान तो इसमें गलत है थोड़ा सुखी छाया इस भौतिक जगत में सुखी बनने की इच्छा से कर्म सकाम कर्म समीहते योजना बनाता है असुखम केवल दुख के लिए यह सेवाया जिसकी सेवा करने से तम कर्म बंधन को विधोनति सच्चा बनाता है असत मतिम मलिन मनोबुद्धि शरी ग्रंथिम कठिन गाठ स श्री भगवान भिद्दत काट जाकर हृदयम हृदय में स अह श्री भगवान न हमारा गुरु गुरु अनुवाद तात्पर्य शिला भाई चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी के द्वारा इस भौतिक संसार में सुखी बनने की आकांक्षा से मूर्खो बद्धजीवी सकाम कर्म करता है जिससे केवल कष्ट ही मिलता है किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के सेवा करने से मनुष्य सुख की ऐसी झूठी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। मेरे गुरु मेरे हृदय के भीतर की झूठी इच्छाओं की ग्रंथि को काट दे। आप लोग दोहराइए इस भौतिक संसार में सुखी बनने के आकांक्षा से मूर्ख बद्धजीव सकाम कर्म करता है जिससे केवल कष्ट ही मिलते हैं किंतु पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की सेवा करने से मनुष्य सुखी की ऐसे झूठी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है। मेरे गुरु मेरे हृदय के भीतर की झूठी इच्छाओं की ग्रंथि को काट दे। भौतिक सुख के लिए बद्धजीव सकाम कर्म में संलग्न होता है किंतु वस्तुतः वह उसे भौतिक दुख में डाल देते हैं। इसे न जानने के कारण बद्धजीव का अविद्या में रहना रहना कहा जाता है। बद्धजीव सुखी की झूठी आशा से विविध भौतिक योजनाओं को अपनाने में लग जाता है। यह महाराज सत्यव्रत प्रार्थना करते हैं कि श्री भगवान झूठी सुखी इस कठोर गांठ को काट दे और उसकी परम आध्यात्मिक गुरु बन जाए। ओम अज्ञान तिमिरंधस ज्ञानांजन शलाकय सप्रणीतम येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टम स्थापितम येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति शपदान्तिक वंदे अहम श्रीगुरो श्रीजोता पदकमलम श्रीगुरोन वैष्णवं च श्रीरूपं साग्र जातं सहगणा रघुनाथं नितं तं सजीवं साद्वैतं सवधूतं परिजन संहितं कृष्ण चैतन्य देव आधा कृष्ण पादं सहगण ललिता श्री विशाखवितं च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांतो स्वामिनीति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशो तारिणे वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महाबदान्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरते श्री नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तु। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विशोभान सुते देवी प्रणामामि हरि प्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद दैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। श्री गौर नेताय कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर ललिता विशाखा जगत गुरु श्री प्रभुपाद के चरण में कटी कटी प्रणाम करते, आप लोग के चरण में प्रणाम करते हुए हम आज, मैं क्लास तो देना नहीं चाहता, मैं योग्यता नहीं है, फिर भी बोलना पड़ता है। तो ये भागवत की बहुत सुंदर श्लोक है जो सत्यव्रत महाराज सत्यव्रत जी बता रहे मत्स्य अवतार से। मत्स्य अवतार आप लोग जानते, कथा सुन चुके हैं कि छोटे से मछली थे, फिर तर्पण करने गए तो छोटी मछली, फिर कमंडल में खेल बड़े हुए और बड़े करते करते सागर में, और उसने उनसे साथ बात किया कि कैसे उन्होंने क्या प्रलय होने वाला है, तो इसी प्रकार कैसे क्या करना है, मैं आऊंगा ऐसे वृष्टि होते रहेगा, तब आके सभी बीजों को लेकर और सभी ऋषियों को लेकर और सभी जीवात्मा को सूक्ष्म रूप में, तो सभी नाव में एक नाव देखने मिलना और वासुकी नाग से उस नाव से, और मेरा एक सिंह रहेगा, बहुत विशाल मत्स्य अवतार। उन्होंने उनकी सुरक्षा पहले बोले, तो इन्होंने स्तुति किया जी कैसे जो नो अबुद्ध अबुद्धिमान है, तो कम से कम सकाम कर्म बोले तो हम सकाम कर्म की स्थिति में भी नहीं है। आजकल की दुनिया की लोग विकर्म में सब फंसा हुआ है। और नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं, ज्ञान कांडो कर्म कांडो सकली विषेर भांड अमृत बोलिया जेवा खाए। तो हमें समझ में नहीं आती है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु एवं भागवत में द्वितीय श्लोक में हम देखते हैं, धर्म परिज्जित कैतवत्र परम निर्मा शरणम सताम वेदम वास्तवम वस्तु देने के लिए, वास्तव तो अहित की भक्ति करना है भगवान की। हमें कुछ भी होते भगवान से प्रार्थना करो, ये करो वो करो, क्या नहीं समझते हैं कि हमारे जरूरत है सुख के लिए कर्म करते हैं, कितना भी सुख मिले कितने भी। आखिरी में गोविंद दास जी कहते हैं, कमल दल जल जीवन टलो मलो भजो हे हरि पद नीति रे। तो हमारे जीवन की क्या भरसा है, कमल के पत्ते में जल की बूंद की जैसे, कोई हवा की झोंका आए तो बर्फ गिर जाए, तो हमारा जीवन की क्या भरोसा है। इसके लिए बार बार सकाम कर्म करना है, सुख भोगना है, फिर जन्म मृत्यु इतना यंत्रणा में, कुछ गलती हो गया तो जैसे गिरगिट बनना पड़े, क्या बनना पड़ेगा, कोई गलती तो होती ही रहता है सकाम कर्म में। और भगवान पुत्तावे उन्हें विद्यते, और इस भक्ति मार्ग गलती तो शिकारी नहीं, गलती तो ये नहीं करते है, रिएक्शन नहीं है, लेकिन कर्म कांड में बहुत रिएक्शन है, बहुत खतरनाक रिएक्शन हो सकता है। इतना पुण्य कर्म बोलते हैं निर्ग महाराज की जो पुण्य है, इतनी पुण्य कर्म किया उसको वर्णन ही नहीं कर सकते हैं, लेकिन क्या हुआ, गिरगिट डंडा हो रहा। इसलिए हमें सकाम कर्म से हमें बचना है, बार बार इसको हम देखते हैं, अभी सकाम कर्म मेरे लिए पूजा कर दो, मेरे लिए कर दो, ये सब नहीं, भगवान से प्रार्थना करो प्रभु। नाम गोत्र पूजा पर इस कर्मकांड छोड़िए, महाप्रभु के सिद्धांत नहीं है, आचार्य के सिद्धांत नहीं है, हरदास ठाकुर के जीवन में हम देखते हैं इतने खतरनाक स्थिति में फंसा, लेकिन एक बार भी हमें बचाओ प्रभु बोले नहीं कि प्रभु हमें बचाइए, एक बार भी नहीं बोला कि हमें बचाइए प्रभु। प्रार्थना किया, क्या किया, प्रभु मैं मरना चाहता हूं, एक बार याचना किया जीवन में, किस लिए, प्रभु मैं शरीर छोड़ना चाहता हूं बस। और प्रभु से कोई कितने खतरनाक कितने माया, दो दो एक बार तो बेश्या आई, दूसरा बार साक्षात माया देवी आई, इसके बाद उनको पिटाया गया, कितना अपमान किया गया, गोपाल चक्रवर्ती ने बोला नाक कान काट दूंगा तुम्हारा, सही शास्त्रों की बात बताने के बाद भी बोला नाक कान काट दूंगा, लेकिन एक बार भी प्रभु से प्रार्थना की प्रभु हमें बचाइए, ऐसे 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 क्यों मेरे झेलना पड़ रहा है, एक ही बार। तो इसी प्रकार हमें निष्काम भजन करना है, नहीं तो जौन अवुद है शुभ सत्यव्रत महाराज जी कहते हैं जनो अवुदय अवुदयम निज कर्म वंदना, सकाम कर्म करेंगे कभी छूटेंगे नहीं इससे, अनादि अनादि काल से जन्म मृत्यु चराविधि सुख है सुख, स्वर्ग भी जाएंगे, स्वर्ग से अवर यद निवर्धनते तद्धाम परमम मम, फिर लौट आएंगे। तो हमें समझना है हमारे आचार्य लोग ऐसे प्रार्थना नहीं किया, चैतन्य महाप्रभु ऐसे नहीं, न धनम न जनम न सुंदरम कविता बजगदीश काम ए मम जन्म निश्चर भगवता भक्तिर अहित की हेतु बिल्कुल छोड़ना है, केवल कृष्ण की खुशी के लिए। आप ये सोचिए हमारा जब माता पिता है इतना बुद्धिमान है सबको जानता है सबको पालन करते हैं, हम उनके बच्चे हैं, हमें देखेंगे नहीं, बोलना पड़ेगा, छोटे बच्चे हैं उसको बोलना पड़ेगा माँ हमें देखो, माताजी पिताजी हमें ध्यान देना, कोई बोलना पड़ता है बच्चे को माताजी बताते, तो इससे भी करोड़ गुना दयालु स्नेहशील शक्तिशाली हमारा माता पिता है, इतना चिंता क्यों है। इसलिए तो भगवान मुस्कुराते रहते हैं कि देखो मैं रहती है बेचारा कितना डर, बोला ये तुम मुझे बचाओ तुम मुझे बचाओ तुम मुझे बचाओ बचाओ मुझे रक्षा करो। इसी प्रकार जो है बहुत सुंदर श्लोक है, तो कैसे यत सेवाया तम विधुनोति असत मोती, इस या माने या तो भगवान की सेवा करने से ही इस असत मोती धूल जाएगा बार बार रगड़ने, इसलिए महाप्रभु बोला चेतो दर्पण मार्जनम, घिसना पड़ेगा। रामानंद राय जब मिले तो महापुरुष से प्रार्थना, दर्शन मात्र शुद्ध नहे मोर दुष्ट मन पाशा दिन दिने रही करो हे मार्जन तबे शुद्ध हये मोर ये दुष्ट मन, बोले केवल महापुरुष से प्रार्थना के रामानंद राय कि प्रभु केवल आपकी दर्शन मात्र से मेरा ये दुष्ट मन शुद्ध नहीं, आप कुछ दिन सात दिन रहिए सात आठ दिन और मुझे घिसिए बिल्कुल घिस घिस के मेरे मल जो सकाम कर्म के मल है इसको निकाल दीजिए, ये छोड़ता नहीं है कामना वासना मांगना केवल मांगना और अपने के लिए। जैसे हम अपने कार्यों में ध्यान देते अपना समझते इसे भगवान के कार्य सेवा में ध्यान देना है, उसे ज्यादा ध्यान देना है भगवान की वस्तु के लिए। बोलते हैं राघव पंडित जब झाली ले जाता था मकर ध्वज को, उसको बोलता था बेटा तू इसको संभालना, वो अपने प्राणों से ज्यादा ध्यान देता था, महा ये झाली जो है प्रसाद भोग जो है महाप्रभु के लिए जा रहे हैं, इसलिए प्राण से प्राण सबसे प्यारा होते हैं, प्राण से ज्यादा ध्यान देते थे वो झाली के प्रति, नहीं इष्कन का छोरो ऐसे नहीं, ऐसे ध्यान देते थे तभी तो महान बने, तभी तो एक महान बने। इसी प्रकार हमें यत सेवा भगवान के सेवा करके हम जो है जिसकी सेवा करने से जिसके करने से हम विधुनोती अच्छा से धूल जाएगा हमारा मति। हरे कृष्णा 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 हरे हरे
हरे राम 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 हरे।
तो आज की प्रसंग में बहुत मैचिंग है, थोड़ा सा भी गलती हो जाने से क्या होता है इसके बारे में आज गोविंद घोष बोलते हैं। गोविंद घोष माधव और वासु माधव और गोविंद तीन भाई बोले ये महत महत श्रीपाठ, क्योंकि इस अग्रदीप गौर मंडल परिक्रमा करेंगे तो पहले जो है आपको मायापुर से निकाल के अग्रदीप जाना। अग्रदीप में इनकी तीनों महान अनुभूति विभूति की आविर्भाव स्थल है, इसलिए महाश्रीपाठ बताया। वैष्णव को जो जन्म स्थान है उसको श्रीपाठ कहते हैं, महाश्रीपाठ। भगवान के आविर्भाव स्थान को धाम कहते हैं। तो महाश्रीपाठ अग्रदीप, हम लोग अभी गौर मंडल परिक्रमा शुरू किया है तो हम लोग कुछ लोग है इसमें बैठे हैं जो गौर मंडल की है। वास्तव में गौर मंडल जब तक नहीं करेंगे इस पद को समझ में नहीं आएगी। गौर मंडल भूमि जे बाजाने चिंता मुनि तार है ब्रजो भूमि वास। तो इस दिव्य वैष्णव को जन्म स्थान जो गौर मंडल कहते हैं इसके लिए पहले है अग्रदीप। इस तीन महानुभाव की आविर्भाव स्थल है। तो बचपन से ये क्या है, ये विशोखा की तीन सखी है। विशोखा देवी अपने से पद रचना करती है और ये तीन ये गाने में बहुत एक्सपर्ट है। महाप्रभु इसके गान भजन सुनने में बहुत, उनके कीर्तन भजन सुनने वासु घोष आदि गाय गौर आरती में जैसे है तो महाप्रभु बहुत खुश। तो ये ऐसे तैसे नहीं, ये साक्षात विशाखा देवी की तीन सखी थी। तीन सखी वो पद बनाती थी विशाखा और इसको गाकर राधा कृष्ण को सुनाते थे। ये गौर लीला में तीन भाई होकर जन्म लिए, तीन सखी तीन भाई होकर जन्म लिए और अग्रदीप में, इसलिए महाश्रीपाठ है। काल क्रम में महाप्रभु जब सन्यास लेने के बाद महाप्रभु आए गौर देश में, 5 साल बाद महाप्रभु गौर देश में आए। गोविंद ब्रह्मचारी था, छोटे भाई गोविंद ब्रह्मचारी था, उन्होंने कुछ दिन महाप्रभु की सेवा में योगदान दिया। महाप्रभु की सेवा करते थे, सेवा करते करते एक दिन महाप्रभु, पहले महाप्रभु जी सन्नर से पहले पान खाते थे, बाद में महाप्रभु हरते की आदि दूसरे दूसरे मुखवास लेते थे। तो हरते की पेट के लिए बहुत अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे। तो महाप्रभु हरते के लेते थे। गोविंद से बोला, गोविंद भोजन मध्यान्ह भोजन के बाद महाप्रभु बोले कि गोविंद एक हरते के लेके आओ। तो हरते के लाने के लिए घड़ी देखा, घड़ी घड़ी दिखाई नहीं दे रहा ठीक से। हरते के लाने के लिए बोले तो गोविंद, बंगाल में थोड़ा कमी है हरते की, इधर भी नहीं है, तो जंगल में नहीं है, पान साड़ी के दुकान में ही केवल है। तो गए ढूंढ डांड के समय लगा तो उनके मन में विचार हुआ कि कुछ ज्यादा ही ले लेता हूं, इकट्ठा करके रखा। महाप्रभु को एक दिया, महाप्रभु खाए। देखिए बात करना है ना, टू द पॉइंट में बात करना चाहिए। तो महाप्रभु कुछ नहीं बोले उनको, तो वो विचार किया थी महाप्रभु के सेवा, वो ऐसे वो अच्छा विचार किया क्योंकि महाप्रभु के सेवा के लिए मान लीजिए 15 मिनट आधा घंटा देर हो जाए, महाप्रभु तुरंत भोजन किया, ऐसे अच्छा प्लस पॉइंट में सोचा था गोविंद। तो वो ऐसे को ये नहीं सोचा था कि अरे मूल्यवान वस्तु भी नहीं है, जा बहुत ज्यादा सोने चांदी जैसे मूल्यवान भी नहीं है, लेकिन कुछ इकट्ठा करेगा। दूसरे दिन भजन करने के बाद कहा कि गोविंद एक हरते के लेकर तुरंत निकल के दे, तुरंत निकल के दे। अरे काल तुम हरदी की तुम्हें मंगा और तुम 15 मिनट बाद में लेके आयो। आज तुरंत दे दिए। कारण क्या, कहां से मिला? प्रभु आपकी सेवा के लिए जरूरत है, आपकी सेवा में विघ्न हो रहे हैं, इसलिए मैं कुछ इकट्ठा करके लगा। मतलब टू द पॉइंट, उसे मैं नहीं बोले, अभी पॉइंट में आए तो महाप्रभु तुरंत, हमेशा बोलना नहीं चाहिए। महापुरुष से पूरा मैनेजमेंट सीखना है, कैसे मैनेजमेंट करते हैं, नहीं तो वो छुपाएगा, इधर उधर करेगा, टू द पॉइंट में बात करना है। तो महापुरुष टू द पॉइंट, जब दिया निकाल के तुरंत बात किया, क्यों तुमने कहा मिला? मतलब प्रभु आपकी सेवा के लिए बाधा हो रहा है, इसलिए मैं उसको इकट्ठा करके रखा हूं। देखो गोविंद, तुम्हारा मन में संचय करने का बुद्धि है, इसलिए तुम गृहस्थ बन जाओ, मेरे सेवा में तुम नहीं रहना। तब उन्होंने देखा प्रभु ये मेरे एकदम छोटी सी गलती है, ऐसे आप लोग मत सोचिए, इतना करेक्ट हम हो ही नहीं सकते हैं। राघव पंडित जैसे शुद्धता के बारे में सोचेंगे हम सेवा कर ही नहीं सकते हैं, इतनी शुद्ध था। और जो छोटा हरिदास की जैसे पनिशमेंट इतने टाइट है, तो हम भी आउट है, संभव नहीं है। तो इसी प्रकार महाप्रभु जी रिक्वेस्ट किया, बोला नहीं देखिए तुम्हें हम माफ कर दूंगा, लेकिन तुम्हारा संचय करने का बुद्धि तुम्हारा हृदय में है, इसलिए तुम गिरास्त बन जाओ। उन्होंने बहुत रिक्वेस्ट किया, बहुत छोटी सी गलती है, प्रभु हमें माफ कर दीजिए, बिल्कुल इतनी बड़ी साझा मुझे मत दे दीजिए। बोले नहीं तुम रह नहीं सकते मेरे साथ, जाओ। कुछ कुछ निर्णय में महाप्रभु बहुत कड़क थे। इसी प्रकार उन्हें ना आ गया अग्रदीप वापस आ गया, और महापुरुष बोले थे मैं तुम्हारे पास आऊंगा, मैं तुम्हारे पास आऊंगा। तब महापुरुष वो गांव में आ गए, रोते 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 रोते, बहुत अपने को बहुत दुखी हुआ, अपने को बहुत धिकार दिए। कोई भी स्वाभाविक है, महापुरुष के डायरेक्ट सेवा कर रहे, उससे कोई किसी को वंचित हो जाए, कैसे कितनी दुख होगा होगी उनके मन में। तो उन्होंने बहुत दुखी रोते रोते आ गए, गांव में आए तो गंगा निकट है, गंगा स्नान करने जाते थे। सुबह सुबह एक दिन गए, सुबह जाकर गंगा स्नान किए, तो बहुत एक बड़ी भारी लकड़ी जो है जला हुआ लकड़ी वो उनके शरीर में लगा। तो गोविंद घोष ने सोचा जला हुआ है ऊपर जैसे दिख रहा काला सा लकड़ी है, उसके मुर्दा का लकड़ी होगा, मुर्दा जला के फेंक दिया, वो गंगा में भाव भाव के आ गया। तो ऐसे उठा तो फिर स्नान किया, ऊपर ऊपर फेंक दिया उसको, बोला दूसरा किसी को भी लगेगा, ऊपर फेंक दिया, फेंक दिया और आ गए। तब फिर रात को महापुरुष सपने में आया, बोला गोविंद मैं तेरा पास आया था, तू मुझे फेंक के आ गया, तू मुझे फेंक है, वो कोई साधारण नहीं। तो बोला इसको तू लेके आ, और घर पे लेके आकर कारपेंटर बुला और एक सुंदर गोपीनाथ जी के विग्रह बनाओ, मैं उसमें विराजमान रहूंगा। इसी रूप में गोपीनाथ के रूप में गौरचंद्र आ गए। तब उनसे सुंदर एक विग्रह बनाए, घर पे एक मंदिर बनाए, मंदिर बनाकर उनकी सेवा करते रहे। धीरे धीरे उनकी शादी भी हो गई, गांव के लोग देखे सुंदर उनके सेवा पूजा, सुंदर अच्छे ढंग से गोपीनाथ के विग्रह बनाकर उन्होंने किए हैं। तब शादी भी हुई, शादी हो गई, और इसके बाद उन्होंने एक पुत्र जन्म हुआ, उनके नाम था गोराचांद। गोराचांद की आयु जब 5 साल हुआ, बड़े अच्छे भक्त थे, तो गोविंद घोष को कभी बाहर जाना था, तो बोला मैं बाहर जाऊंगा गोपीनाथ के लिए, आज गोराचांद भोग लगा देंगे। और गोराचांद से बोल दिया बेटा ठीक से खिला देना ठाकुर जी को। तो गोविंद घोष जी चले गए बाहर, आए उनकी माँ जो सुंदर से भोग बना के दे दी, और जाकर उन्होंने जब भोग लगाए, भोग लगने पर ठाकुर तो नहीं खा रहा है, ठाकुर जी नहीं खा रहा है, तो बहुत रिक्वेस्ट किया ठाकुर जी का, आप लोग खाओ खाओ, पिताजी बोले खिलाने के लिए, आप भूखा रह जाओगे। तो इसी प्रकार जब बोले तब ठाकुर जी उसी भोग प्लेट से एक कोने से खाली कर दिया, प्लेट खा लिया ठाकुर जी, प्रकट होकर साक्षात प्रकट होकर गोपीनाथ जी भोजन किया। भोजन करने के बाद ये पहले बार भोग लगाया, पिताजी घर पे नहीं थे, तो फिर गोराचंद ने कहा कि माँ मुझे बहुत भूख लगा, मुझे प्रसाद दे दो। तो भोग के थाली, बेटा बोल रहा है भूख भी लगा है, भोग के थाली देखिए एक साइड में खाली है। माता जी की डाउट हो गई, पिताजी लगाए थे कभी तो खाली नहीं होता, इस खाली बच्चा को पहले दिन लगाया, छोटा सा बच्चा है ये, शायद इसे बोल रहा है भूख लगा है मुझे, वो खा लिया होगा, तो इसलिए क्या होगा, भोग प्लेट ऐसे कैसे है। और गोपीनाथ जी मना कर दी, यदि तुम इस बात को, मैंने इसे भोग ले लिया हूं, खाया हूं, प्रसाद ये भोग पाया हूं, यदि तुम कह दोगे तुम्हारा मृत्यु हो जाएंगे। मतलब इतना कठोर है, बोला नहीं कि तुम गुंगा बन जाओगे, बोल नहीं पाओगे, नहीं, तुम शरीर तुम्हारा छूटेगा। तब ऐसे मां जब देखे, वो बोले कि मुझे बहुत भूख लगा है, मुझे कुछ खिलाओ, तभी तो भोग प्लेट में देखे खाली है, तो माता जी ने बहुत पूछे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, बोल तो नहीं सकता, जैसे रघुनंदन ने तो बोल दिया ठाकुर जी सब खा लिया, प्रसाद कहाँ मिलेगा, सब खा लिया, लेकिन ये तो बोलना मना है ठाकुर जी, ठाकुर जी की योजना ठाकुर जाने। तब वो बहुत रोने लगे, बहुत डर गए, तो उसके बाद बहुत जब धमकार रही थी तो उन्होंने कह दिया कि गोपीनाथ जी ने खा लिया, गोपीनाथ जी खाते तो तुरंत रक्त बमन होकर तुरंत बेचारा वही मर गया, मृत्यु हो गए। शाम को पिताजी आए, पिताजी आए सब माता सब बताई, तो देखे बेटा कि ध्यान तो अभी गोपीनाथ के ऊपर गुस्सा हो गया, तुमने मुझे, मैं ब्रह्मचारी था, अच्छाई था, साधारण गलती हुआ, तो इसने आ गया, और आने के बाद कम से कम संसार धर्म पालन करने के लिए एक बेटा मेरा हुआ था, उसे भी आपने मार दिया, उसको आपकी सेवा के लिए, कारण क्या मिला आपके सेवा से मुझे, तो मेरा पिंडो श्राद्धो पिंडो आदि दान कौन करेगा, बताओ गोपीनाथ तुम बोलो, तुम्हारे लिए मेरा ये दशा हुआ, अभी बोलो मेरा क्या क्या स्थिति होगा, बताओ। गोपीनाथ जी ने कहा कि मैं करूंगा, आज जो गोराचंद है, आज गोराचंद को जान लेना, ये गोपीनाथ है, गोपीनाथ ही तुम्हारा बेटा है आज से, श्राद्धो पिंडदान हाँ सब करूंगा, अभी भी कर रहा है, बेटा करने का, बेटा पोता नाती उसके बाद छाती छुती कितना होगा 500 साल में गया गुजरा, कोई करता कुछ, लेकिन गोपीनाथ जी अभी भी कर रहा है। रीति मत उसकी मिट्टी के मूर्ति बनाकर मुंडन करके समाधि में लाया जाता है, अभी मंत्र पढ़ता है पंडित, बोलो गोपीनाथ, तो अभी भी होता है। तीसरी प्रकार उन्होंने बोला मैं करूंगा, ऐसे समय हो गया, उनके सेवा करते करते कुछ दिन बाद उनकी पत्नी वियोग में, पुत्र वियोग में, वो भी संसार छोड़ के चली गई। फिर धीरे धीरे गोपीनाथ सेवा करते रहे, अपने बेटा के जैसे गोपीनाथ जी की सेवा करते रहे गोविंद घोष जी, और करते करते उनका भी देहांत हो गया, गांव का लोग उनको अग्नि संस्कार, उनको समाधि दिए। समाधि देने के बाद बंगाल में क्या होते हैं, थान कपड़े जो होते हैं, जो इस मैटर की होते हैं, एक कपड़े होते हैं उसको पहनते हैं, 10 दिन तक उसको जो सूताक धारण करते हैं, शोक चिन्ह जैसे कहते हैं, तो आकर देखे कि गोपीनाथ पहन लिया, वो आपने पहना, कोई नहीं पहना है, कहा महार मार्केट गया, कब मार्केट गया, कैसे लाया पता नहीं, वो आके सभी भक्त लोग देखते हैं गोविंद घोष तो चले गए, आके देखते ये तो ऐसे पहन लिया। बंगाल में जैसे सूता जो शोक चिन्ह धारण करते एक दो वस्त्र, एक पहनने के लिए एक ओढ़ेंगे, 10 दिन तक एक वस्त्र पहन के रहेंगे, उसी में स्नान करेंगे, उसी गीला वस्त्र में रहेंगे। अभी रहता है नहीं रहता है, हैं? अभी नहीं रहता है, हैं? हाँ, तो उसी एक ही वस्त्र में। तो गोपीनाथ जी ऐसे वस्त्र पहन लिया, सभी लोग आके देखे भाई तो उनको ड्रेसिंग किया हुआ था, कहा गए वस्त्र पता नहीं है वस्त्र कहां से लाया, और खुद विग्रह है वो पहन लिया, खुद पहना, अपने ड्रेसिंग तो नहीं करते, लेकिन पिताजी का देहांत हो गया तब कहां से वस्त्र लाए पता नहीं, ऐसे को तो कुछ नहीं करते ठग गोपीनाथ, सब उनको पहनना पड़ता है, ये करना पड़ता है, सब कुछ करना, ये देखो पहन लिया। तब से उन्हें हर साल गोविंद घोष की जो तिरुभापति थी के महा फेस्टिवल अग्रदीप फेस्टिवल तब से गोपीनाथ ने किया, उन्होंने पूरा विधि विधान के साथ उन्होंने उनकी मंत्र क्रिया किया, और अभी तक जो है भगवान चिरादोदी यही तो कहिलाम नित्यानंदेरो बिहार, चिरादोदी नामे ख्यातो महोत्सव जार। तो कविराज गोस्वामी ने रघुनाथ दास गोस्वामी के बारे में ख्यातो मतलब जितना रघुनाथ दास गोस्वामी किया था उससे भी कोई विशाल या अभी भी उच्च महोत्सव होते हैं। तो गोपीनाथ जी ने उनके श्राद्ध क्रिया किया, तो आज भी लाखों की संख्या के लोगों को खिलाते हैं लोग, अलग अलग संस्था के लोग, अलग अलग लोग मन्नत करते हैं कि मेरा ये पूर्ण हो जाए, कैसे ना कैसे गोपीनाथ कर लिया व्यवस्था, कोई मन्नत करता है कि मेरा पूरा हो जाएगा, मैं इतना लोगों को प्रसाद खिलाऊंगा, हजारों लोग आते हैं खिलाने के लिए, हजारों टीम आते हैं खिलाने के लिए। आज आप लोग जाएंगे अग्रदीप में गोपीनाथ मंदिर में उसे प्रवेश, अग्रदीप में प्रवेश नहीं कर सकते, इतनी लाखों की संख्या में लोग आएंगे, और तब से चलते रहा और आगे भी इसको चलेंगे, यही भगवान के लीलाएं हैं। इसी प्रकार भगवान से आप प्रेम करेंगे तो भगवान आपके बेटा भी बन जाएंगे, आपके सभी कार्य करेंगे। तो सोचना जिसका बेटा नहीं है वो इस चिंता नहीं करना है। इंद्रदुम्न महाराज ने बताया कि नहीं मुझे भी वंशज में कोई नहीं होना चाहिए, तो वैष्णवीर क्रिया मुद्रा विज्ञ ना बुझाए, विज्ञ भी नहीं समझ पाते हैं कि वैष्णव की क्रिया मुद्रा कैसे होते हैं। इसी प्रकार अग्रदीप महाधाम है, और जिसने इसी प्रकार गोविंद घोष की, तो उसके बाद अभी हम लोग गए तो दूसरा मंदिर में थे, गोपीनाथ जी अभी आएंगे, इनकी जो मूल मंदिर है, उनकी जन्म भेटा है, उनकी समाधि है, तमाल वृक्ष आदि है अभी भी सुंदर, तो अभी आएंगे आकर इसी मंदिर में कुछ दिन तक रहेंगे, उनका यह है फिर नौका योग से जाएंगे, आगे जाकर कृष्णनगर में कुछ दिन रहेंगे, फिर जन्माष्टमी के बाद ना उसके पहले आएंगे, इसी प्रकार वो घूमते हैं। तो गोपीनाथ जी अभी भी विराजमान हैं, सुंदर भव्य स्थान है, सुंदर तमाल वृक्ष है, उनकी समाधि है, सुंदर स्थिति है। तो आज इस गोविंद घोष की तिरुभाव तिथि महामहोत्सव है, इसलिए इस वैष्णव को और उनका भाई जो है वासुदेव घोष, जब पता चला कि महापुरुष चला गया, वो तमलुक में रहते थे, बोला महापुरुष मीना मुले चला गया, ठीक है गड्ढा खोदो, वो भी समाधि ले लिया, बोला मुझे मिट्टी डालो, तो गांव का लोग सोचे भाई ये ध्यान मग्न तो खाना पीना फास्टिंग तो कर रहा है, ठीक है मट्टी डालेंगे इनका जब तक जान में जान रहेगा तो बैठ गया ध्यान लगा के बैठ गया कि मिट्टी डालो अभी मैं जिंदा समाधि, इसलिए उनका नाम है नरपोता। जहा मनुष्य को गाड़ देते हैं ऐसे, तो इसकी नाम नाम भी पड़ गया तमलूक है, एक है नरपोता। तो इसी प्रकार वो दिव्य स्थान भी है, तो उसमें महापुरुष साक्षात आ गए विग्रह रूप में और अभी भी वो महापुरुष उधर है। इसी प्रकार ये गोविंद घोष की ये है। तो हम लोग इस श्लोक से बहुत रिलेशन है कि थोड़ा सा ये भक्ति करते ही भी संचय था, तो इतने कड़कता हम नहीं हो सकते हैं, आप ऐसे दुखी मत होइएगा। ये महापुरुष उसके लिए अपना लीला परिकार के लिए बहुत कड़क दिखाया, इतने कड़क होगा तो कोई जीना ही भी मुश्किल होगा। तो इसी प्रकार जो है हमें कर्म यही करना है कि भगवान के पितार्थ है, भगवान की प्रीति के लिए कार्य करेंगे तब कभी कोई दुख हो ही नहीं सकता है। छोड़िए इस कर्म कांडो को, इसी को, और आप गोविंद घोष के स्थिति देश काल परिस्थिति के अनुसार इसी महाप्रभु इसलिए युक्त वैराग्य के बारे में बताएं। इसी महाप्रभु दुई तीन दिन अन्न राखे ने संगति जहा शून्य वन लोकर नाही को बसती ताहा भट्टाचार्य से अन्न करे पाक फल मूले व्यंजन करे बन्न नाना शाक। वही महाप्रभु जब बलभद्र भट्टाचार्य ने दो चार दिन के लिए चावल रखते थे कि यदि महाप्रभु इस झारखंड के जंगल से जा रहे हैं, यदि गांव नहीं मिलेगा तो क्या होगा, महापुरुष भूखा रहेंगे। वो जानते हैं कि बलभद्र मंडल ने चावल रखा है, कुछ नहीं बोला। इसलिए सब कुछ समझना है, इधर मिल सकता है सब कुछ मिल, तो नहीं रखना है, कोई इकट्ठा नहीं करना है, कोई भी इकट्ठा नहीं किया। लेकिन झारखंड से जब आए तो उन्होंने तीन चार दिन के चावल बलभद्र हमेशा रखते थे साथ में। तो इसलिए देश काल परिस्थिति के अनुसार विचार करना पड़ेगा। तीसरे प्रकार आज हम यहाँ विराम देते हैं, कोई प्रश्न है, कोई जिज्ञासा है। सकाम कर्म कोई भी नहीं करना है, जो हम इच्छा लेकर जो कार्य करते हैं ये इच्छा, एक सकाम कर्म आप नहीं बोलेंगे, जैसे कृष्ण प्रेम प्राप्त करना, कृष्ण के चरण कमल प्राप्त करना, इसी की उनकी सेवा प्राप्त करना, ये रख सकते हैं आप। भगवान की सेवा की वंशाएं कर सकते हैं, योजना बना सकते हैं, बहुत योजना बना सकते हैं भगवान की खुशी के लिए, कृष्ण प्रेम प्राप्त के लिए, आप ये इसको इच्छा रख सकते हैं। और जो इच्छा है, आप गृहस्थ हैं, आप ठाकुर जी को घर को समर्पण करना है, इसके बाद जो भी कमाई करना है, ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा ठाकुर जी के लिए खुश कर सकते हैं। सेंटर में भगवान होना चाहिए, इसका केंद्र। मैं जो कार्य कर रहा हूं, आप भले घर में रहिए, घर में कार्य करें, नकड़ी बिजनेस जो भी करना है आप, मतलब शास्त्र के अनुसार जो भी कार्य हम निर्धारित है उसी कार्य आप कीजिए, धर्म के अनुसार उसे कार्य करके केंद्र कृष्ण को रखिए, यही निष्काम हो जाएगा। क्योंकि खुशी इसमें कृष्ण के लिए, घर भी बनाया, जो भी बनाया, अच्छे महल बनाए, अच्छे भोग लगाया, सब कुछ किया, सब कृष्ण के लिए। सेंटर में कृष्ण रहेगा तब निष्काम होगा, क्योंकि उनकी इच्छा को पूर्ति करना है। सर्ववधि निर्मित तत्पद न निर्मलम हिषिकेश सेवनम भक्तिर उच्चते। शुद्ध भक्तिर गुण क्या है, ये इंद्रियों से इंद्रियों की स्वामी ऋषिकेश की सेवा करना है। इसलिए प्रभुपाद जी बोलते, बोले रोटी थोड़ी है भगवान खा लेंगे, आपको ही तो दे देंगे। इसी प्रकार भगवान के लिए अच्छे सब कुछ बनाना है, केंद्र भगवान रहना है। और इतने जितना इच्छा कीजिए, बड़ी बड़ी इच्छा कीजिए, हाँ अच्छे भगवान के लिए बहुत कुछ महल बना लीजिए, अच्छे चलेगा। लेकिन भगवान ने केवल मैं ही सुखी रहूंगा, मुझे धन मिलेगा, पुण्य कर्म दान, कैसे मान लीजिए, जैसे आपको किसी को खिलाना है, ऐसे आप कुकिंग करके खिला दिया, ये सकाम कर्म में चला गया। आपने उसको आपको पुण्य मिलेगा, भोगना पड़ेगा आपको। और आपने प्रसाद खिलाया तो भोक्ति उत्थो पूर्ण है वो। आपने प्रसाद खिला, अच्छा से प्रसाद खिलाया तो वो ये आपका सकाम कर्म में नहीं आया। इसी प्रकार की जो सेवा है, जो आपने इच्छा के लिए जो कर्मकांड हम देखते हैं, इसकी पूर्ति के लिए का अनुष्ठान किया जाए, उसकी पूर्ति के लिए अनुष्ठान किया जाए, ये इच्छा पूर्ति के लिए, राज्य प्राप्ति के लिए, धन प्राप्ति के लिए, ऐसे जो योजना बनाया जाता है कि वो भोगेगा कौन, मैं, उसका सेंटर कृष्ण नहीं है। सेंटर में कृष्ण होना चाहिए। सभी सभी कार्य करने का उद्देश्य कृष्ण के लिए, कृष्ण की खुशी के लिए करेंगे तब हाँ, ऐसे भक्त बहुत है, भक्तों के ऐसे आदर्श है जो संतान नहीं मानते हैं, मांगते हैं। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं, हम इसलिए गृहस्थ नहीं बने कि हम भक्ति बिना ठाकुर जैसे संतान को उत्पन्न नहीं कर सकते। भक्तों का अलग अलग विनम्रता है, तो इसी प्रकार बहुत अच्छी बात है। भगवान को ही मानना ही तो बोला, मोर पुत्र मोर सखा मोर प्राणपति, यही भावे जयी मरे करे शुद्ध भक्ति। तो हरे कृष्ण। हाँ महाप्रभु जी ने बताया, हरेर नाम हरेर नाम हरे नाम केवलम कलो नास्तैव 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 गतिरन्नथा। तो बोले यही तो सर्वसिद्धि होइबे तुम्हार, सर्वक्षण जप विधिनी। तो बोले इसी जे हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। साधो साधन जो भी लक्ष्य है, साध्य साधन जो कि सकल हरिनाम संकीर्तन में सब कुछ मिलेगा। यहा बिना सही तो सुमेदाय आर कुबुद्धि संसारे संकीर्तन। तो इसी प्रकार ये महामंत्र दिया, आप कृष्ण प्राम प्राप्त के लिए भजन जोपेंगे तो कृष्ण प्रेम प्राप्त। बोला निरोपराधे नाम लोले पाए प्रेमधन, नहीं तो अर्थ चाहिए तो वो भी मिलेगा, सब कुछ मिल जाएगा। इसी से जल्दी से कृष्ण चाहिए कृष्ण मिल जाएगा, मंत्र ही है। সেই তো সুমেধা আর কুবুদ্ধি সংসারে সর্বযজ্ঞ হইতে কৃষ্ণ নাম যজ্ঞ সারে। বলে ওই যো জিসকো জপ করতে হয় সুমেধা, মেধা মানে বুদ্ধি হ্যায়, সুমেধা বহুত অচ্ছি বুদ্ধি হ্যায় যো হরিকৃষ্ণ মহামন্ত্র জপ করতে হ্যায়, আর সব কুবুদ্ধি হ্যায়, কোই দূসরা কো চিন্তা সোচনা হি নেই হ্যায়, হরিকৃষ্ণ জপ করনা। হরে কৃষ্ণ।